श्री राम जय
साथ का भेद होता है, यानी अपने लक्ष्य को पहचान के
इस नाम रूपात्मक प्रपंच की दृष्टि हटा करके इस जगत के अंदर स्वरूपता परमात्मा का दर्शन करता है। संसार स्वरूपता परमात्मा का ही अंश है, उसी का ही रूप है। सर्वम खर्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन नाम और रूप का जो हमारा आसक्ति है मोह है, इसको यदि छोड़ करके चिंतन करते हैं तब यह ब्रह्म ही है। ऐसा चिंतन हम कर रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ किया था महाराज श्री की कृपा से, आज इस उपनिषद की समाप्ति पूर्णा होती है। आज जो 16वां मंत्र है उसका विचार कर रहे हैं हम। पूषण लेकर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो जत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि पुरुषावसु पुरुषा सोमस्मी। ऐसा चिंतन है, इसमें भी जैसे कल पीछे वाले मंत्र में भी सूर्य देव के पूषा रूपता परमात्मा के आगे प्रार्थना की थी जिज्ञासु ने कि मेरे को जो मैं सत्य धर्मा हूँ यानी सत्य स्वरूप को जानने की इच्छा वाला हूँ तो उस सत्य का मेरे को दर्शन हो जाए, उस सत्य को मैं जान जाऊँ। इसलिए हे प्रभु पिता परमात्मा, हे पूषा, जो सबका पोषण करने वाले, उसको कहते हैं पूषा, यानी सूर्य भगवान को पूषा कहते हैं, वही सबका पोषण करते हैं। तो ईश्वर को कहा था कि जो हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, उस हिरणमय पात्र को ऊपर से हटा दीजिए। तो हिरणमय के सदृश जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, इसी का जो अशक्ति रूपी पर्दा है उसको हटा दीजिए, तो मैं सत्य स्वरूप का दर्शन करूँ। तो आज इस मंत्र में भी प्रार्थना कर रहे हैं, उसी ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं जैसे कल प्रार्थना की थी। आज कहते हैं कि हे पूषा, हे एकांत में अकेले रहने वाले, एकाकी गमन करने वाले, ये सब परमात्मा के ईश्वर के नाम है। पूषण यानी हे जगत के पोषण भरण करने वाले, एकर्ष का अर्थ, एक का अर्थ है कि एकाकी गमन करने वाले। यम का अर्थ है कि प्रभुपिता परमात्मा सबके भीतर रह करके सर्व अंतर्यामी है, अंतर्यामी रूप में सबका शासन करने वाले को कहते हैं यम। हे सबका शासन करने वाले, हे सूर्य देव, हे प्रजा, प्रजापत्य का अर्थ है प्रजापति के प्यारे, आप अपनी जो रश्मि है इन रश्मियों को समेट लीजिए, जो बहुत तेज रश्मि है इनको समेट लीजिए। तो मैं जो आपका अति शोभन जो तेजो मैं स्वरूप है, उसकी आपकी कृपा से जो कल्याणकारी आपका रूप है, उसका मैं दर्शन पश्यामि, उसको मैं देख रहा हूँ, उसका मैं दर्शन कर रहा हूँ। जो असल पुरुषा सोहमस्मी, यो आदित्य मंडलस्थ सूर्य मंडलस्थ जो पुरुष है, अथवा जो व्यष्टि शरीर में रहने वाला पुरुष है, वह मैं हूँ, ऐसा मैं दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी जो रश्मियाँ हैं उनको हटा दीजिए। कल भी यही प्रार्थना की थी, यानी जो हिरणगर्भ है ना, उसी को प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी जो रश्मि है उसको हटा दीजिए। पहले मंत्र में भी यही कहा था और इस मंत्र में भी यही कहा था। तो जो हमारा अंतःकरण है, उस अंतःकरण का निर्माण कैसे होता है, वृत्ति कैसे बनती है? तो जब कोई हमारे को किसी वस्तु की जानकारी होती है उसके बाद हम उस वस्तु की जानकारी के बाद प्रयत्न करते हैं, और जब प्रयत्न करते हैं तो उसकी फिर प्राप्ति होती है, हमारी वृत्ति बनती है तद विषयाकार। तो हम सब कुछ जानते हैं, पढ़ करके, सुन करके, सोच करके, फिर उसका हमारे अंदर संस्कार बनता है। तो जो कर्म हम करते हैं उसी के हमारे अंदर संस्कार होते हैं। तो जो जो हमने पूर्व जन्म में किया है वो सारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे अंदर आए हुए हैं, और जो अनादि विद्या के कारण क्या हुआ हमारे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो हमारे अकेले अकेले के अंतःकरण में पड़ा हुआ है। ये जो अंतःकरण में पड़े हुए संस्कार हैं यही रश्मि हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं तो सूर्य को दिखाई नहीं, जब सूर्य देता तो हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया, लेकिन बादल में इतनी क्षमता नहीं है कि सूर्य को ढक जाए। घनश्यामवन जो जैसे घन कहते जो बादल है ना, जब बादल आगे आता है तो हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया। सूर्य इतना व्यापक है कि बादल तो परिच्छन्न है, उसको ढक नहीं सकता। लेकिन जो मोटी दृष्टि वाला स्थूल दृष्टि वाला है वो यही कहता है कि आज सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, क्या हुआ, बादल ने ढक दिया। बादल ने सूर्य को कहाँ ढका है, बादल तो थोड़ी जगह पर होता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर बादल है और आगे जा करके देखेंगे वहाँ धूप लगी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि जितना सूर्य मंडल है उतना बड़ा बादल नहीं है, उतना बड़ा सूर्य से बड़ा होगा तभी सूर्य को ढक पाएगा। तो क्या होता है वहाँ पर, सूर्य को बादल ने नहीं ढका, बादल ने हमारी दृष्टि को ढक दिया। सूर्य को देखने वाली जो हमारी दृष्टि थी उसको ढका है बादल ने, सूर्य को नहीं ढका है। लेकिन हम लोग ऐसे ही समझते हैं। उसी प्रकार जो हमारा स्वरूप है सचेतन आनंद स्वरूप, उसको ढक कोई नहीं सकता, उस सत्य के ऊपर कोई भी पर्दा नहीं आ सकता। तो जो पर्दा हमारे अंदर हम समझते हैं, जो हम अपने आप को जीव मानते हैं, उसमें कारण क्या हुआ, जैसे जो अविवेकी है वो बादल को देख करके जानता है कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है, उसी प्रकार ही जो अविवेकी हैं, जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने चिंतन नहीं किया, उनको लगता है कि मैं वास्तव में जीव हो गया, अब मैं ब्रह्म से, प्रभु पिता परमात्मा से मिल नहीं सकता, अत्यंत अपने आप को अलग मानता है। इसलिए जो चेतन के धर्म हैं वो उसके अंदर जो पर्दा है उससे ढक जाते हैं। जो चेतन का सत्य है, चित्त है, आनंद है, जो तीन धर्म हैं ये किससे ढक जाते हैं, सत्य को किसने ढक दिया, असत ने ढक दिया, और चित्त को किसने ढक दिया, जड़ ने ढक दिया, और जो आनंद था उसको किसने ढक दिया, दुख ने। ये जो असत जड़ जो दुख है ना धर्म, ये परमात्मा के अंदर नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ये परमात्मा के विशेषण नहीं है, ये आत्मा के अंदर नहीं रहते हैं, ये अनात्मा के धर्म है। अनात्मा यानी प्रपंच जगत संसार के धर्म है, क्योंकि संसार असत है और संसार ही जड़ है और संसार ही दुख रूप है। लेकिन जो अविवेकी पुरुष हैं वो समझता है कि मैं असत हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं दुख रूप हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि जैसे बादल का भ्रम हमारे को हो जाता है, उसी प्रकार ही हमारे को अपने स्वरूप का भ्रम हो गया कि मेरे को वास्तव में मैं जीव हूँ, है तो प्रभु पिता परमात्मा से मेरा अभेद है। तो यहाँ पर वही प्रार्थना करता है जिज्ञासु कि ये जो अलग अलग अंतःकरण में जो चेतन के आभास युक्त जो वृत्तियाँ हैं ना अलग अलग बनती हैं, संस्कार रूप जो रश्मि है जैसे बादल सूर्य को नहीं ना दिखने देता, उसी प्रकार जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो भी सूर्य का दर्शन करने में बाधक होती है। आप देखिएगा सुबह सुबह आप सूर्य को देख सकते हो, दिन में आप सूर्य को कहाँ देख पाते हैं। जब बादल नहीं होता तब भी आप सूर्य को नहीं देख पाते। तेज किरणें जब आती है तो आपकी आँखों को, आपकी दृष्टि को बीच में से रोक देती है, सूर्य को नहीं देखने देती। उसी प्रकार जो हमारे अंदर संस्कार रूपी जो किरणें हैं ना, वो हमारे को हमारे स्वरूप का दर्शन नहीं करने देते। हमारा जो स्वरूप है वो भी प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाशित करता है। सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य को हम कहते हैं कि इसको बादल नहीं ढकता। बादल का भी वही प्रकाशक है, सूर्य की किरणों के द्वारा ही बादल दिख रहा है दिन में, नहीं तो बादल कैसे दिखेगा। जो बादल को प्रकाश करने वाला है उसको बादल कैसे ढकेगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि आज बादल ने सूर्य को ढका है। उसी प्रकार जो हमारे अंदर वृत्तियां बनी हैं, जो हमारे पूर्व कर्म के जो संस्कार हैं, वो संस्कार जो हैं वो अनित्य कर्म के द्वारा बने हुए हैं। तो कर्म का, इंद्रियों का, अंतःकरण का, सबका प्रकाश कौन है? हम हैं सबके प्रकाश। लेकिन अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा हम कहते हैं कि मेरे को, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, इसलिए हमारी उससे एकता नहीं, एकत्व नहीं हो पाता, तो दुखी होते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं कि ये जो बंधन हमारे को दिखाई पड़ रहा है ना, इसका कारण तो केवल अविवेक है। अवचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। ये जो हमारे को बंधन दिखाई पड़ता है ना, सुख दुख का, जन्म मरण का, भूख प्यास का, सुखी दुखी पने का, कर्ता भोक्ता पने का, जितना दुख दिखाई पड़ता है इसका क्या कारण है? अविचार। हम विचार नहीं करते। विचार की जो पद्धति है वो ऊपर की बात है, क्योंकि हम लोग अभी उस क्लास के विद्यार्थी नहीं बने हैं ना, इसलिए लगता है। हम विद्यार्थी किस क्लास के हैं? बहुत छोटे। यानी कर्म और उपासना तो हमारे समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया समझ में नहीं आती। ये नहीं कि ज्ञान की प्रक्रिया असंभव है, असंभव नहीं है, संभव है लेकिन कठिन है। उसमें परिश्रम, वैसे तो यदि देखा जाए तो जितना कर्म में और उपासना में परिश्रम है उतना ज्ञान में नहीं है। किसी भी कर्म को करने के लिए आपको कितने साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं। आपको रोटी बनानी हो तो पहले आपको आटा चाहिए, अग्नि चाहिए, पानी चाहिए, और उसके बाद आपको रोटी बनाने की तरीका आना चाहिए, तब आप रोटी बना सकते हैं। लेकिन रोटी का यदि ज्ञान करना हो तो उसके लिए आपको इतने साधन थोड़ी इकट्ठे करने पड़ते हैं। वो तो आपको विचार करने से पता चल जाता है, किसी से आपने सुन लिया कि ऐसे ऐसे रोटी बनती है तो आपको रोटी का ज्ञान हो जाएगा कि किसको रोटी कहते हैं। तो इसमें कौन सा जोर लगा आपका? कोई जोर नहीं लगता आपका, परिश्रम नहीं हुआ, केवल बताने से आप समझ गए कि इसको रोटी कहते हैं। घड़ा जो बनाया है कुमार ने, कुलाल ने, उसने कितना परिश्रम किया है। उसने मिट्टी लाया, चक, चीवर, जो कुछ भी उसका प्रयत्न है, तब उसने घड़ा बनाया है। लेकिन हमारे को किसी ने बोला कि ये घट है, इतने तो बोला, तो आप उसके इतने श्रवण मात्र से उसको पूछ लेते हैं कि इसको घड़ा कहते हैं, तो आप जान जाते हैं कि ये घड़ा है। उसी प्रकार जो हमारे स्वरूप का चिंतन करना है ना, इसमें परिश्रम वैसा नहीं है जैसा कर्म और उपासना के लिए है। उसमें यदि उपासना के पद्धति के बारे ना ज्ञान हो तब भी नहीं कर पाते। यदि उस उपासना के कर्म के अनुसार हमारा जीवन ना हो, हमारा संयम ना हो, तब भी वो बीच में छूट जाता है। यदि कोई विघ्न पड़ जाता है तब भी छूट जाता है। तो ये जो हमारा स्वरूप का ज्ञान की प्राप्ति है, इसके लिए हमारे को कर्म और उपासना जैसा परिश्रम नहीं है, यहाँ पर क्रिया की जरूरत नहीं है। जो कर्म है उपासना है वो कर्ता के अधीन होती है, क्रिया के अधीन होती है। वहाँ पर कर्ता और क्रिया दोनों चाहिए, तभी कर्म और उपासना हो सकती है। लेकिन जो हमारे स्वरूप का ज्ञान है ना, किसी के अधीन नहीं है, उसको कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, उसको क्रिया की जरूरत नहीं है। क्रिया से साध्य यदि हमारी मुक्ति होगी तो वह अनित्य होगी, क्योंकि कर्म का फल आप जानते हैं कि अनित्य होता है। कर्म से जो भी फल आप प्राप्त करते हैं वह अनित्य रहता है। इसलिए जो हमारा ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप स्वरूप की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। कर्म नहीं करना पड़ता, केवल विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। चिंतन कैसे करना है, यही तो विचार कर रहे हैं। तो जिज्ञासु ने प्रार्थना ये की है कि ये जो मेरा बंधन है ना, इस बंधन को हटा दो आप। और बंधन को हटाने के लिए क्या है, ये कहा कि आपकी जो किरणें हैं ना, रश्मि समूह है, उसको हटा दो। जैसे सूर्य की किरणें जब हट जाती है तो सूर्य का दर्शन हो जाता है। जब किरणें रहती है तो हमारी दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय आप उसका अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी किरणें उसकी तेज नहीं है। ये कहते हैं जो आपकी तेज किरणें हैं ना, उसको हटा देती है। तो तेज किरणें यहाँ पर कौन सी हैं, जो परमात्मा रूपी सूर्य है उसकी तेज किरणें, जो ये हमारे अंतःकरण में पड़े हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कार है ना, जो संसार के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। हमारे मन के अंदर जो संस्कार है, संकल्प मात्र हमारा मन है, वही तो संसार के पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है। जब उसकी किरणें फैल जाती है, जब हमारे मन के संकल्प फैल जाते हैं, तो फिर हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। जैसे सूर्य का दर्शन नहीं होता, तो सूर्य की किरणें जब सूर्य से समेट लेते हैं तो सूर्य का दर्शन हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे मन के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को, ये तो हमारे व्यष्टि मन की बात है, जो समष्टि है, समष्टि कौन है, हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं, वह समष्टि प्राण है सबकी। उसी से उत्पत्ति, उसी से रक्षा, उसी में प्रलय होती है। सबका अवसान हिरण्यगर्भ में होता है, ईश्वर कुछ नहीं करता है। जब संसार का नियंत्रण करता है ना, उसको जाम कह देते हैं, शासन करता है तो जाम, नहीं तो जब संसार की प्रलय हो जाती है तब उसका नाम ईश्वर है, कुछ नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं कि हे पूषण, हे ईश्वर, हे हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर, आपकी जो समष्टि संस्कार रूपी जो किरणें हैं ना, उसको समेट लो। वो उसका प्रतिबिंब जो पड़ रहा है हर एक जीव के अंदर, उसको कहते हैं कि आप वृत्तियों के सहित समेट लो, तो मैं अपने स्वरूप का दर्शन कर सकूं। वो कैसा है प्रभु पिता परमात्मा ईश्वर, कहते हैं कि जिसने जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जो वही ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा को जिसने पहले उत्पन्न किया और उसको वेदों का ज्ञान दिया, ऐसा जो पूषण है, ऐसा जो ईश्वर है, उसकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मैं उसकी शरण में होकर के प्रार्थना करता हूँ कि जिसने आपने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उसको वेद का ज्ञान दिया, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हम मानते हैं, आप इनके सबके प्रकाशक हो, क्योंकि ये संसार का नियंत्रण करने वाले शक्ति हैं। जब इनके आप नियंता हो तो संसार के भी आप नियंता हो। एक और पंक्ति आती है ना, आपने श्रवण की है पावन वाणी में, कि छे कर छे गुर छे उपदेश, तो वहाँ पर भी यही बात है, गोर गोर एको वेश अनेक, गोर गोर एको, जो इस संसार का पद्धति बताते हैं ना, कर्मों की या संसार में कर्म करने की पद्धति बताते हैं शास्त्र, छे शास्त्र, उनके कर्ता, शेय का अर्थ है शेय शास्त्र, शेय गुर का अर्थ है कि उनको रचना करने वाले छह उनके कर्ता, और छह ही उनके अलग अलग उपदेश हैं, लेकिन उन शास्त्रों का, शास्त्रों के कर्ता का और शास्त्र के अंदर जो उपदेश हैं मत हैं उनका सबका गौर गौर एक, उन सभी छह शास्त्रों के कर्ताओं का गुरु एक है। तो गुरु का अर्थ तो कल हमने बतलाया था कि जो सबका वाहन करता है, सबको चलाता है, जिसके कहने से ये सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसा जो गुरु है वह एक है, तो उसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी जो आपकी जो रश्मि है, सुबू है ना, उनको आप समेट लीजिए तो मैं अपने स्वरूप का दर्शन कर सकूं। अब आगे वाले जो सत्तारवां मंत्र है उसमें कहते हैं वायुरनिल ममृत मतेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर्कृतम स्मर्कृतो स्मर्कृतम स्मर। अब कहते हैं कि ये जो प्राणवायु से, यहाँ पर वायु का अर्थ है प्राणवायु, तो प्राणवायु से क्या लेंगे, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, तो जो अंतम गति है, अंतम अवस्था है, मृत्यु का समय है, उस समय की बात करते हैं कि जिज्ञासु को उस समय क्या करना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए। तो जिज्ञासु की अवस्था बताते हैं कि जिज्ञासु कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि ये जो मेरा लिंग शरीर है, जब मेरा अंतम समय हो, मृत्यु का समय हो, तो ये वाला जो मेरा सूक्ष्म शरीर है वो सूत्र आत्मा रूप जो अमृत है, सूत्र आत्मा और हिरण्यगर्भ दो है ना, है तो एक है लेकिन क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को लेकर के दो कहे जाते हैं, दोनों चेतन के ही नाम हैं। क्रिया शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कहते हैं और ज्ञान शक्ति को लेकर के सूत्र आत्मा कहते हैं। तो सूत्र, जैसे सूत्र ने सभी मन के पुरवे होते हैं, या जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, एक ही सूत्र में पिरोए होते हैं, यानी सूत्र उनका नियंत्रण करता है, उनको बांध करके रखता है, उसी प्रकार जो हमारे अंदर सर्व अंतर्यामी रूप में प्रत्येक आत्मा के रूप में बैठ करके हमारा नियंत्रण करते हैं उनको कहते हैं सूत्र आत्मा। और जिन जो ये संसार को चलाने वाले हैं उनके भी कर्म का विभाग करते हैं, उनको उस चेतन शक्ति को बोल देते हैं हिरण्यगर्भ। तो इसलिए ये कहते हैं कि जब मेरा अंतम समय हो तो मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, वो सूत्र आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त करके अमृत, अमृत को प्राप्त करे। अमृत का अर्थ मृत्यु रहित होना होता है। तो जब सूत्र आत्मा के साथ कहते हैं अभेद होकर के अमृतत्व को प्राप्त करें, तो सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ ये भी एक अवधि है, अवधि के बाद इसकी समाप्ति होगी। तो कहते हैं जब तक उस लोक में रहेंगे जिस इष्ट की हमने उपासना की है, तब तक अमृतत्व की प्राप्ति मानी जाती है, ये बड़ा अमृतत्व है। जब वहाँ से हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है तो मानो वहाँ पर जो हम भोग भोगते हैं उसी को अमृत माना है। जब वहाँ से छूटेंगे तो छीणे पुण्य मृत्यलोक में शांति, फिर नीचे आना पड़ेगा, लेकिन तब तक कहते हैं मैं उस लोक में रहूँ। सूत्र आत्मा के साथ यदि अभेद होऊंगा तो तब तक मेरे को अमृतत्व की प्राप्ति होगी। और जो ये शरीर है, इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, एक तो सूक्ष्म शरीर है, उसको कहते हैं कि वो सूत्र आत्मा के साथ अभेद होकर के अमृतत्व की प्राप्ति करे। और ये वाला जो शरीर है, इदम हसमान तो शरीरम इदम, यानी यह वाला शरीर इदम होता इदम तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम यानी जो सामने है हमारे इंद्रियों गोचर है, यानी ये जो स्थूल शरीर है ये मेरा अपने उपादान में पंचभूतों में मिलकर के तो भस्मीभूत हो जाए। तो ऐसा कहते हैं हे संकल्प प्रधान पुरुष, हे मान ओ प्रतो स्मर। यहाँ पर कहते हैं कि जब अंतम समय हो तो अपने मन को सावधान करके जिज्ञासु कहता है कि ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु पिता परमात्मा के आगे कि जो मेरा संकल्प प्रधान जो मन है अब इस समय क्या करे। ओ यानी जो प्रभु पिता परमात्मा का नाम है उसका उच्चारण करे, या क्या करते प्रथम स्मरण। प्रथम का अर्थ है जो मैंने कर्म किए हैं उन कर्मों का स्मरण करे। कौन से कर्म? कर्म और उपासना जो हमने की है प्रभु पिता परमात्मा की इष्ट देवता की है या किसी ने ब्रह्म की है उसका स्मरण करे। तो इसलिए जब उसका स्मरण करेगा तो उस समय उसको जो संसार के विषयों का चिंतन नहीं होता, क्योंकि जैसा कोई चिंतन करेगा अंतिम समय में उसी योनि में उसको जाना पड़ेगा। ये नियम है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कहते हैं ना भगवान कि जो जो जैसा जैसा स्मरण करता है ना अंतिम समय में शरीर छोड़ता है, तम तमय वेति कौन्तेय हे कौन्तेय, वो उसी उसी वासना के अनुसार उसी उसी योनि को प्राप्त होता है। एक पावन वाणी में भक्त जी ने एक बहुत सुंदर शब्द ऐसा ही उच्चारण किया है, त्रिलोचन जी महाराज ने उच्चारण किया शब्द कि जो जैसी भावना जिसकी होती है जो जैसा स्मरण करता है उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है। वो कहते हैं कि अंतकाल जो दशमी सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे, सर्प जोन बाबला अवतरे, ये पावन वाणी का वचन है कि अंत समय में जो दशमी का यानी जो माया का स्मरण करता धन का चिंतन करता है ऐश्वर्य जो उसने इकट्ठी की है जो उसका चिंतन करता है उसको बार बार किस योनि में आना पड़ता है, सर्प जोन। हम कहते हैं ना कि जहाँ कोई खजाना होता है ना उसके ऊपर सर्प रहता है उसकी रक्षा करता है वही आदमी सर्प बन के वहाँ आता है, ये आम कहावत होती है। आम कह देते हैं कि आप धन के साथ इतना प्रेम करते हैं तो सर्प बनोगे। तो भक्त जी महाराज भी कहते हैं कि अंतकाल जो दशमी सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे, ऐसा चिंतन करते हुए जो शरीर छोड़ता है सर्प जोन वाला बहुत तरह उसको बार बार सर्प की जूनी प्राप्त होती है। फिर आगे कहते हैं कि अंत का जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता मह जिमर है, तो उसको कौन सी जूनी मिलती है? उसको मिलती है बेसवा जोन वाला अवतर है, उसको बार बार वेश्या का जन्म मिलता है। उसने चिंतन ऐसा किया है जैसा चिंतन करेगा उसको वैसी ही जोनी में आना पड़ेगा। फिर कहते हैं अंतकाल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे, जो अंतम समय में पुत्रों को याद करता है संतान को याद करता है उसको कौन सी जोनी मिलती है? क्योंकि उसने पुत्रों को याद किया ना, उसने बच्चों को याद किया, तो उसको कौन सी जोनी मिलती है? शुक्र जोन वाला अवतर है, क्योंकि सूर्य के कितने बच्चे होते हैं? एक ही बार 6-7 बच्चे होते हैं उसके, इसलिए जो बच्चों को याद करता पुत्रों को याद करता है भगत जी कहते हैं शुक्र जोन वाला अवतर है, उसको बार बार शुक्र की जोनी में आना पड़ता है। हम जब भी संसार के लोग मरते हैं ना बहुत लोग, तो उनका यही तो चिंतन होता है, या तो धन को याद करते हैं या स्त्री पुत्र बांधों को याद करते हैं या फिर मकान को याद करते हैं। उसके लिए वे कहते हैं अंतकाल जो मंदिर सिमरे, मंदिर यानी मकान जो बनाया है कोठी बनाई है, अंतकाल जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे, जो ऐसी चिंतन करता हुआ मरता है उसको कौन सी योनि मिलती है? प्रेत जोन बार वाला अवतर है, उसको फिर प्रेत बनना पड़ता है, प्रेत बन के वहीं रहता है। ये सब चिंतन का प्रभाव है, जैसा हम चिंतन करेंगे उसी योनि में हमारे को आना पड़ेगा। तो भगत जी ने अंत में निर्णय करके बतलाया कि जो जैसा चिंतन करता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। तो जैसे भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भावम, उसी प्रकार भगत जी महाराज पावन वाणी में कहते हैं अंतकाल नारायण सिमरै। जो अंत समय में नारायण का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, नाम का उच्चारण करता है, वदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। त्रिलोचन जी महाराज कहते हैं वह जो प्राणी है ना वह मुक्त हो जाता है। पीतंबर वाके हृदय बसे, पीतंबर यानी भगवान, पीत है अंबर वस्त्र जिनके, सगुण में लोगे तो भगवान कृष्ण की बात आ जाती है और निर्गुण में लोगे तो जो प्रभु पिता परमात्मा जो व्यापक है संसार में उसको भी ले लेते हैं। वो नारायण, वो कृष्ण जी के भक्त हैं त्रिलोचन जी, इसलिए उन्होंने दोनों बात की है कि अंतकार नारायण सिमरै। नारायण से कौन है जो सब में व्याप्त है, पीतंबर से कौन है भगवान कृष्ण, दोनों की बात वहाँ की है कि अंतकाल जो नारायण को याद करता है यानी उसका चिंतन करता है और जो तत्ववेता होता है वो तो अपनी स्थिति में रहता है, उसको तो स्वरूप का ही स्मरण क्या साक्षात्कार है, उसने तो किसी का स्मरण करना ही नहीं है, उसका तो सब कुछ हो चुका समाप्त। वो उसके लिए कहते हैं कि ब्रह्मवेता होते हैं जो भले चिल्लाते हुए शरीर छोड़े, उनको कितना भी कष्ट देखो आप उनके अंत समय में तब भी उनकी स्थिति में अंतर नहीं पड़ता। ये हमने देखा है, महाराज जी बैठे हैं सामने, स्वामी रामानंद जी महाराज थे जब वो बनारस में, उन्होंने उनका संकल्प था कि हम इस शरीर का त्याग बनारस में करेंगे। तो जब बनारस में अंत समय में महाराज जी पहुँचे तो बनारस, जब भी वो बनारस में जाते थे तो विद्यार्थी लोग सब इकट्ठे हो जाते थे उनके पास और अपने अपने जो जो किसी का प्रश्न होता था उनके पूछते थे। तो जब उनका अंतिम समय था तो सब विद्यार्थी लोग इकट्ठे हुए, हम नहीं गए, सभी लोग अपना अपना प्रश्न पूछते थे। लेकिन उनको कष्ट इतना था कि बैठे बैठे, मतलब जब उनको कष्ट होता था तो जैसे हम लोग रोते हैं ना, ऐसे उनकी मतलब उनका चिल्लाने लगते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ, हम ही बैठे थे तो उधर से भक्त आ गए, कोई उनके भक्त, तो महाराज जी को बहुत कष्ट हुआ तो उनकी आंखों से मतलब आंसू निकल रहे थे। तो भक्त लोग भी देख के रोने लगे, भक्तों को प्रेम होता ना उनके शरीर के साथ, प्रेम था। तो वो हम लोग बैठे थे, वो कहते भाई ये क्या बात है, उनको कह रहे थे भक्तों, कहते ये क्या करते हैं, कहते हमारे को देख करके भ्रांति में मत पड़ो भाई, ये शरीर की बात है हमारी बात नहीं है, ये कुछ देख रहे हो ये हमने देखा है हमारी आंखों देखते हुए बोला महाराज ने, कहते इसको देख करके क्यों रोते हो भैया, ये हमारी स्थिति नहीं है, ये शरीर की है, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। तो वैसे उन्होंने महाराज ने शरीर छोड़ने तक वहाँ उनको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन जब भी कोई जाता था ऐसे बैठ जाते थे, कहते बताइए महात्मा जी क्या पूछना है। तो वो लोग पहले चिंतन करके अपनी स्थिति में पहुँच गए। यहाँ पर कहते हैं कि जो जैसा चिंतन करता है उसको वैसी ही योनि प्राप्त होती है, या जैसा किसी का आदि में होता है ना अंत तक उसको वैसा ही वैराग्य बना रहे। एक और पावन शब्द कबीर जी ने बोला है, वो बोलते हैं कबीर जैसी उपजी पेड़ के जो जो तैसी निभ है ओड़, हीरा किसका बापुरा उजहरा रत्न करोड़। ऐसा भी शब्द बोला कबीर जैसी उपजी पेड़ के, कहते हैं जो पेड़ यानी जो पौधा होता है ना छोटा, जब शुरू में उत्पन्न होता है ना, जब पैदा होता है पौधा तो कितना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि कितनी भी आंधी आ जाए कभी उसको तोड़ नहीं सकती। ये आपने देखा होगा छोटे पौधे को आंधी कभी नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ती? वो इतना कोमल होता है कि जब आंधी आती है तो झुक जाता है, उसको नहीं तोड़ती। इसी प्रकार कहते हैं जिस दिन हमने भक्ति आरंभ की है ना, उस दिन जैसा हमारा वैराग्य था ऐसा यदि अंत तक बना रहे हमारा, जैसे हम घर से आते हैं तो हमारे जितना वैराग्य होता है उतना साधु को बना रहे, तब तो ठीक है। तो इसी प्रकार जब शुरू से हम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर अहम त्याग करके शुरू करते हैं ना, हम शरण में जाते हैं गुरु की शरण में तो अपना अहम छोड़ करके जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब रहते हैं तो धीरे धीरे जब मैंने जैसे पौधा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी शाखाएँ निकलती है बड़ा होता है तो उसको आंधी तोड़ देती है, कहीं झुकता नहीं ना, उसकी कोमलता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार कहते हैं कि जैसी आरंभ में होती है ना अवस्था वैसी अंत समय तक बनी रहे। तो जो ऐसा जिज्ञासु होता है उसके लिए बोलते हैं कि हीरा किसका बापुरा उज्जै ना रत्न करोड़। वो कहते हैं उसकी सदृश हीरा जो यानी जो अमूल्य संसार की वस्तुएं हैं इनकी तो बात ही छोड़ो, सभी संसार की ऐश्वर्य इकट्ठी करके रख तो तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो ही बता रहे हैं कि जैसा कोई चिंतन करता प्रार्थना करते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए हे भगवान हे कृष्ण कि मैं जब मेरा अंतिम समय हो तो मेरा बार बड़ा शरीर जो है ये भस्मांत हो जाए, ये पंच तत्व में मिल जाए और जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि जो आवागमन है वो किसका होता है? सूक्ष्म शरीर का होता है। स्थूल शरीर तो जहीं रह जाता है हम देखते हैं, आवागमन जो होता है आना जाना होता है स्थूल शरीर का, जो प्राण सहित है 17 तत्वों का जो शरीर है उसी का आना जाना होता है। तो प्रार्थना करते हैं कि जब मेरा अंतिम समय हो तो ये वाला शरीर भस्मांत हो जाए, जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने कारण में अभेद हो जाए, जिससे अपने आप को अलग मानता है उसमें चला जाए। तो जब अपने कारण में अभेद हो जाएगा, कार्य कारण भाव जो है व्यवहारिक दृष्टि से है पारमार्थिक दृष्टि से नहीं, मानता है ना कि मैं मेरे को पैदा किया है भगवान ने, ये संसार को पैदा किया है, ना किसी को पैदा करता है ना कोई पैदा हुआ है, कार्य कारण भाव है नहीं, लेकिन हम तो मानते हैं व्यवहार में। जब हम मानते हैं व्यवहार में तो जब हमारा व्यवहार समाप्त होगा तो हमारे को ऐसा ही मानना पड़ता है कि पहले हम मुक्त नहीं थे अब मुक्त हो गए, व्यवहार में ऐसा मानते हैं। तो कहते हैं कि फिर मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, केवल सूक्ष्म शरीर की बात नहीं इसके साथ कारण शरीर भी ले लेना, जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है उन दोनों का कौन कारण है, जिसको कारण शरीर बोलते यानी अज्ञान। तो अविद्या सहित जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो प्रभु पिता परमात्मा में अभेद हो जाए, अंत समय में किए हुए जो पुण्य कर्म है उसका स्मरण करूं, उपासना का स्मरण करूं। जो उपासक है ये उपासक की बात चल रही है, कर्तव्यता की बात नहीं चलती, वो कुछ नहीं करता। न तस्य प्राण उत्क्रामंती तस्मिन् नेवलीयते, ये श्रुति कहती है कि उसके प्राण कहीं नहीं जाते। तस्मिन् नेवलीयते यहाँ वो शरीर छोड़ता है, वहीं पंच तत्व तन रज्यो जानो चतु सुजान जेहते उपजो नानका लीनता है मैं मान। तो यहाँ उसका शरीर छूटा वहीं उसके प्राण प्राण में मिल जाते हैं, जैसे पहले भी कई बार विचार किया कि पमने में पमन समाया ज्योति में ज्योत रह जाया माटी माटी हुई एक रोवणहार की कमल टेक, तत्व तत्व में मिल जाते हैं और ज्योति ज्योति में मिल जाती है। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं विदेह मुक्ति, पहले वो जीवन मुक्त था, अब शरीर छूटने के बाद जो जो गंध मात्र लेश मात्र जो अविद्या थी जिस जो शरीर के चरने के जो निमित्त था ना देशा विद्या वो भी समाप्त हो गई, उसके बाद विदेह मुक्त। इसलिए कहते हैं कि ऐसा जिज्ञासु प्रार्थना करता है। अब इसके बाद जो 18 मंत्र है, 18 ही मंत्र हैं ईशावास्य उपनिषद के, तो 18वें मंत्र में भी कहते हैं कि अग्नये नये सुपथा राय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान सुयोध्यस्मिन जुहुराण मेरो भूजिष्ठान ते नामुक्तिम विधेमा। अब इसमें कहते हैं कि जो अंतम गति का है इसमें भी वर्णन करते हैं कि अब अग्निदेव के आगे प्रार्थना कर रहे हैं अग्निदेव, क्योंकि जो अग्नि है वो भी सबका प्रकाश है। अग्नि यानी प्रकाश, अग्नि देवता आप सबके साक्षी हो, आप प्रकाश हो। तो हे अग्नये, अग्ने अग्ने कहते हैं अग्ने, हे देव यानी यहाँ पर भी द्योतनाथ की देवा प्रकाशित करने से ही देव कहते हैं, द्योतनाथ देवा प्रकाश करने से ही देव नाम पड़ा है। देव का तो प्रकाश, प्रकाशित तो इंद्रियां भी होती हैं, इसलिए इंद्रियों को भी देव कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभु पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि जो मेरे समस्त कर्म हैं उनको आप जानने वाले हैं, इसलिए आप देव हैं, तो आपकी कृपा करके हमारे को श्रेष्ठ मार्ग से ले चलिए। उपासक की बात है ना, उपासक को मार्ग से जाना पड़ता है, दक्षिणायन से जाना पड़ता है, उत्तरायण से जाना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे को श्रेष्ठ मार्ग से नए सुपथा, सुपथा कहते हैं श्रेष्ठ मार्ग, उत्तरायण से मेरे को ले चलिए। अग्निदेव को कहते हैं कि मेरे को उत्तरायण से ले चलिए, मेरे को दक्षिणायन से ना जाना पड़े, क्योंकि आप मेरे कर्मों को जानते हैं। एक और कहते हैं कि आप मेरे पर ये कृपा कीजिए कि आप दुराण एना बोधी कि हमने जो पाप वंचनात्मक कर्म किए हैं ना संसार में, छल कपट ठगी आदि किए हैं, यानी हमने निषिद्ध कर्म किए, उन कर्मों को मेरे से हटा दीजिए। यानी मेरे जो पाप कर्म मैंने किए हैं जिसके कारण मेरे को भटकना पड़ सकता है, वो आप मेरे कर्म हटा दीजिए, तो फिर मैं श्रेष्ठ मार्ग से जा करके तो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकूं। यहाँ पर भी ये जो 3-4 मंत्र आए हैं इन सब में 3 मंत्रों में प्रार्थना बताई है। स्वरूप का तो शुरू में विवेचन किया था, यहाँ पर तो व्यवहारिक पद्धति से बता रहे हैं कि जिज्ञासु जो उपासक है वह अपने इष्ट देव के आगे ऐसे प्रार्थना करे। जो हमारा स्वरूप है उसको तो शुरू में बता दिया था कि वो कैसा है, पदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंति के, ऐसा बताया था शुरू में। उस स्वरूप का चिंतन जो करता है उसकी तो बात ही नहीं है, वो तो फिर ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मार्दः कस्यचि धनम्। वो तो फिर इस दृष्टि से जीता है संसार में रहता हुआ, इस प्रकार का उसका जीवन हो जाता है कि उसको भोग में त्याग आ जाता है, यानी वासना नहीं रहती उसकी भोग में, अर्थ में निर्लोभता हो जाती है, अर्थ का उसको बार बार चिंतन नहीं होता। लेकिन जो संसार के लोग हैं उनकी कैसी हालत होती है, तो बताते हैं पावन वाणी में गुरु महाराज जी की, हमारी हालत ऐसी है कि हमारे माया मनोहना विसरय मांगे दम्मा दम, हम 24 घंटे धन का चिंतन करते हैं, माया मनोहना विसरय, हमारे मन के अंदर जो संकल्प है ना माया के इकट्ठे करने के, एक क्षण मात्र भी उनका विस्मरण नहीं होता। मांगे दम्मा दम्मा यानी हर श्वास के साथ हम चिंतन करते हैं किसका, माया का, मांगे दम्मा दम्मा, तो जब चिंतन एक वृत्ति एक बार एक ही वृत्ति बनती है, दो प्रकार की वृत्ति एक समय में नहीं बन सकती। जिस समय आप संसार का चिंतन करेंगे तो उस समय भगवान का चिंतन नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति एक ही बनती है, दो वृत्ति नहीं बन सकती। इसी प्रकार इसी करके वहां पर कहते हैं महाराज जी कि मैं माया का चिंतन कर रहा हूँ, श्वास श्वास में माया का चिंतन हो रहा है। तो जब माया की वृत्ति माया का वृत्ति विषयाकार है, तब सो प्रभ चेतना आवई, वो प्रभु नहीं स्मरण में आता। हमारी वृत्ति माया को बार बार चिंतन करती है, तो यदि इस वृत्ति का त्याग होगा तो सारा जो हमने अभी तक जो श्रवण किया है उसमें से पहले ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था का वर्णन किया कि ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है, ब्रह्म की महिमा क्या है, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा क्या है। एक शुरू वाला जो सूत्र है, जो मंत्र है, उसको विद्वान लोग बोलते हैं विद्या, विद्या मंत्र। और दूसरा जो मंत्र है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष चतुर समा, इसको बोलते हैं अविद्या मंत्र। पहले वाले मंत्र में जीवन मुक्त जो तत्व वेता है उनके लिए बोलते हैं, और दूसरा मंत्र जो अभी आत्म तत्व में जिनकी निष्ठा नहीं हुई उनको बोलते हैं कि वह यदि संसार में कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे, ऐसा जो अभी आत्म तत्व में निष्ठ नहीं है, तो ना कर्म लिप्यते नरे, उसको भी कर्म जो है वो बांध नहीं सकता, यानी उसको भी वह अवस्था मिल सकती है जो ईशावासमिदम शर्म वाली अवस्था है। तो जो हमने अभी तक श्रवण किया है इसके अनुसार चिंतन करेंगे तो हमारे को भी वो दृष्टि प्राप्त हो सकती है। मानते हैं कि हम ज्ञान के अधिकारी अपने आप को नहीं मानते, अभी आप भी नहीं हैं, हम भी नहीं हैं, हम सब लोग जिज्ञासु हैं, साधक हैं, लेकिन साधक के लिए ही शास्त्र हैं, जिज्ञासु के लिए ही शास्त्र हैं। बताते हैं महापुरुष लोग कि जो शास्त्र है वो ना अज्ञानी के लिए है ना ज्ञानी के लिए है, बीच वाला जो जिज्ञासु है उसी के लिए संपूर्ण जितना उपदेश है उसी के लिए है। जो भी हम करते हैं साधना, साधना किसके लिए, जिज्ञासु के लिए, ना अज्ञानी के लिए ना ज्ञानी के लिए। ज्ञानी को जरूरत नहीं है और अज्ञानी तो करता ही नहीं है, वो तो पामर है, उसको मतलब ही नहीं है। तो ये जो साधन बतलाए जा रहे हैं, जितना उपदेश देते हैं महापुरुष, किसको, जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए। तो साधक अवश्य मुक्त हो सकता है, अज्ञानी को तो पता नहीं कब उसके अंदर कुछ उसका महापुरुषों के जाने का संकल्प होगा तब आएगा, लेकिन जिज्ञासु तो आधा जानता है, अपूर्ण ज्ञान है उसको, वो उस ज्ञान को पूर्ण करना चाहता है। ज्ञातम इच्छा है उसकी, जानने की इच्छा है, ज्ञातम इच्छा है कि जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा है उसी को जिज्ञासा कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो जो जिज्ञासु है वह अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो हम साधक हैं, जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु हैं तो हमारे को अमंजल जो मंजिल है अवश्य मिलेगी, हम ही भगवान के साथ अभेद हो सकते हैं। तो आज ईशावास्य जो उपनिषद है इसकी पूर्णाहुति हो गई, अब आगे जैसा भगवान कराएंगे वैसा करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।